जी बिस्मिल्ला करें।
सर ये क्वेश्चन है, हमारी फिक्र ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरती आती है।
जी जी।
जब आपकी लौटना पड़ता है तो इसको हमारी फिक्र का रद्द अमल कहते हैं, क्या इसी को सौत भी कहते हैं?
इसी को क्या कहते हैं?
सौत।
नहीं सुनाई दिया, सॉरी, माफी चाहता हूँ।
इसी को साउथ कहते हैं, स्वाद एंड वाउदाल।
साउद, स्वाद एंड वाउदाल, साउद। देखिए बिल्कुल दुरुस्त, देखना जब सीढ़ियां नीचे उतर रही है तो नजूल हुआ, जब ये पलटती है तो क्या हो गया, अब ये नजूल सऊद बन गया। लफ्ज है सऊद, सी स्वाद एन वाओ दाल, सऊद। ठीक हो गया। हर काम में यही कानून काम कर रहा है। इन्ना लिल्लाहे, इन्ना लिल्लाहे, हम हैं ही अल्लाह के लिए, वह इन्ना अलैहि राजिऊन, और हमने उसी की तरफ पलटना। ये जो कानून है कि नजूल और सऊद, अल्लाह की तरफ से तलाती है, हमारे जहन में से होते हुए उसके असरात जिस्म पे मुरतब होते हैं, मुरतसम हो जाते हैं, और फिर वो इत्तला वापस पलटती है हमारे एहसासात को लिए हुए। ये जरा प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें ताकि ये बात जो है जिनसे हो रही है वो उसकी वजाहत हो सके। अब मैं आपको दोबारा एक बात अर्ज करता हूँ। देखिए इत्तला का नाम है वहमा। क्या कहा? इत्तला का नाम है वहमा। ठीक हो गया। अब वहमा असल में इत्तला को कहते हैं। इत्तला जब हमारे जहन से टकराती है एक प्रेशर क्रिएट करती है, उस प्रेशर के को असल में वहमा कहा जाता है। इत्तला का प्रेशर जब जहन में महसूस होता है और जहन उसकी तरफ मतवज हो जाता है तो उसको कहते हैं ख्याल। अब वो इत्तला आपके जहन में दखूल कर रही है, नजूल कर रही है। क्या हुआ? अब वो ख्याल बनी। ख्याल जब जहन ख्याल में फोकस हो गया तो वो तस्वर बनने लगा, तस्वीर बनने लगी। अब ये तस्वीर जब महसूसात के दर्जे पे उतरी, यानी हवास उसकी तरफ मतवज्जो हो गए, क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ने जनरेट किया और आपके जहन ने दिमाग में, अब लव जहन और है दिमाग और है, दिमाग में बरकी इरताशात पैदा की है, यानी पूरा इंसानी वजूद जो है ये इन बरकी इरताशात पे, यानी इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस पे कायम है। इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस के नतीजे में क्या होता है, आपके गदूदों में केमिकल इम्पल्सेस जनरेट करती है। इन गदूदों में केमिकल इम्पल्सेस के नतीजे में आपके नर्व्स और आपके मसल्स, उजलात और आसाब में तहरीकात होती हैं जिनको मोटर इम्पल्सेस कहते हैं। मैंने कई दफा ये मिसाल अर्ज की है, दोबारा सुन लीजिए। मैं एक लफ्ज बोलता हूँ लीमो। अब लीमो जो है आपके जहन में आया तो क्या आया, लीमो की गोलाई, उसकी रंगत, तसव्वुर बना ना। वो तस्वीर के में जब एहसास पैदा हुआ तो आपको लीमू की खटास महसूस हुई, खटास के नतीजे में, खटास क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसके नतीजे में आपके सलाइवा ग्लैंड्स में केमिकल इम्पल्सेस पैदा हुए और मुंह में लुआब पैदा हुआ। जब मजीद जोर पड़ा तो मुंह में पानी आ गया। अब लीमू सुन के मुंह में पानी आना 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हुआ या
जी
2 मिनट में हुआ, टाइम जेरे बहस नहीं है। आप कोई बुरी खबर सुनते हैं, आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप किसी सैड थॉट को सोचते हैं और आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप किसी को मिस करते हैं, उसकी याद में आपके आंसू बहने लगते हैं। क्या मतलब हुआ? प्रोसेस यही 7 दर्जे इन्हीं को सबे समावात कहा है। सारा खेल इतना सा है, हिसियात के इस्तेमाल का सलीका हमें कितना है। क्या हम देखे ना, हम सारी दुनिया में किसी भी चीज का आप नाम लें, मैं नमक लफ्ज बोलता हूं, देखे आपके मुंह में नमकीनी का जायका आ गया, नमक सोचते हुए आपके ऐसा साथ में नमकीनी महसूस हुई और अल्लाह कहते हुए कुछ भी महसूस नहीं होता। क्या मतलब हुआ? मतलब वाजे है कि हम एहसासात से आशना नहीं है, एहसासात को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहते या जानते नहीं। ठीक हो गया
जी, बिल्कुल।
थैंक यू,
जज़ाकअल्लाह,
अल्लाह खुश रखे। जी
जी, अब्बा जी ने फरमाया कि जो कलंदर बाबा और याद का जिक्र आता है, ख्याल आता है तो मैं उसको रोशन महसूस करता हूँ। ये रोशनी हुजूर कलंदर बाबा और याद की रोशनी है या
असल में रोशनी कहते कैसे? तस्वर को। जब मैं किसी का जिक्र करूं तो उसका तस्वर ना आए, उसकी तस्वीर मेरे अंदर ना उभरे। क्या हुआ? हम सिर्फ लफ्जों की अदाई कर रहे हैं। लफ्जों की इस अदाई का ये मतलब तो नहीं कि हमारे हिसियात में एक चीज दाखिल हो गई, लेकिन अगर हम हजूर कलंदर बाबा औलिया का तस्करा करें और उनके तालीमात और उनके जहन का अक्स हमारे अंदर रोशन हो जाए, फिर क्या लफ्ज बोला? रोशन हो जाए। क्या होगा? आप अंदर से मुनव्वर हो जाएंगे या नहीं? नूर कहते हैं ख्याल को, मुनव्वर कहते हैं ख्यालात की बौछाड़ को। यानी जब हम हजूर कलंदर बाबा औलिया का तसव्वुर करें, हमारे अंदर जो ख्यालात की रौ बहेगी वो जाहिर है कि हकीक मबनी बर हकीकत होगी, और हकीकत से वाबस्ता ख्यालात और तसव्वुरात आपके अंदर उजाला ही तो बखेरेंगे, या नहीं? क्यों जी? ये जो आज के आपने पेज तजवीज किए उनके बारे में सवाल फरमाइए।
जी
जी
जी सर, एक सवाल है।
इरशाद,
क्या आलम वाकया और आलम अरवाह एक ही
ये सफा नंबर 34 पे पढ़ें जरा। इसका जवाब मैं क्या दूंगा, हजूर कलंदर बाब औलिया ने जो बात फरमाई है जरा उसको तो पढ़ लीजिए। सफा नंबर 34 पे सेकंड पैरा है, इल्मे वाजिब के बाद जब अल्लाह ताला की सिफात एक कदम और नीचे उतरती हैं तो आलम में वाक्या या आलम में अरवा का जहूर बन जाती हैं। क्या मतलब हुआ? आलम में वाक्या यानी जहां कोई चीज वकू हो और उसी को आलम में अरवा कहा, यही वो महले वकू है जबकि अल्लाह ताला ने जहूरे तखलीक, क्या तखलीक के जहूर का इरादा फरमाया, जहूरे तखलीक का इरादा। तखलीक अल्लाह के जहन में हुई, अल्लाह ने एक बात को करने का इरादा किया और कुछ मकासद को तकाजों के साथ कपल कर दिया, ये है तखलीक। तो जहूर तखलीक का इरादा फरमाया और लफ्ज कुन कहकर अपने इरादे को कायनात की शक्लो सूरत बख्शी। फरमा रहे हैं कि यहां से दो हैसियतें कायम हो जाती हैं, एक हैसियत अल्लाह ताला के इल्म की और दूसरी हैसियत इरादे की। अब इल्म और इरादे में तफरीक कर दी। इल्म का मतलब जो अल्लाह जानता है, इरादा उस जो जानता है उसमें से उसने कुछ चीज सिलेक्ट की और उसका इरादा किया कि इसको मैं मजहर बनाऊं, ठीक है। दरअसल इरादा ही अजल की इब्तदा करता है। गौर करें इस लफ्ज पे, इरादा ही अजल की इब्तदा करता है। अल्लाह के हवाले से आएगा तो अजल से मुराद वो लम्हा जब कायनात का आगाज हुआ, और जब मैं और आप इस लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहेंगे? इरादा ही अजल की इब्तदा करता है, यानी इरादा ही किसी भी चीज की इब्तदा करता है, इरादा ही किसी चीज की इब्तदा करता है। देखे ना, जब आपने ये फोन की बटन दबाया तो आपका इरादा था तो बात शुरू हुई, इरादे ने बात का आगाज किया, ये अजल कहलाया। ठीक हो गया? अब अजल के इब्तदाई मरहले में मौजूदात साकित और सामित हैं, यानी उनमें कोई हरकत नहीं है, साकित यानी सकूत तारी उन पे, सामित यानी बोल नहीं रही। मौजूदात की इस शक्ल को रूहानियत की जबान में इल्मे वहदत कुलियात या इल्मे लोहे महफूज कहते हैं। देखे तीन इस्तलाहात का उन्होंने बताई, एक ही चीज है, लेकिन जब अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ यानी अल्लाह ने चाहा क्या कि मौजूदात का सकूत टूटे, यानी जो साकत और सामित हालत में ये जो मुजस्मे खड़े हैं इनमें हरकत पैदा हो और हरकत का आगाज हो, तो अल्लाह ताला ने मौजूदात को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, अलस्तो बे रब्बे को, क्या ये सारा निजाम तुम्हारे रब की वजह से नहीं है? तुम्हारे रब के साथ नहीं है? बे रब्बे कुम, यानी उस मरहले पे रूहों को कितना शऊर अता हुआ कि उन्होंने देखा कि हमारे वजूद का कयाम अल्लाह के अता करता वसाइल की बुनियाद पे है। जब ये शऊर पैदा हुआ तो क्या हुआ कि मौजूदात की हर शय मतवज्जो हो गई, यानी आप इस लम्हे में जिस भी चीज की तरफ मतवज्जो हो गए, क्या हो गया, आपको इस लम्हे का शऊर पैदा हो गया, उसमें शऊर पैदा हो गया, उस शऊर ने तोलने के बाद, जांचने के बाद, नापने के बाद, तोलने के बाद क्या कहा, बला कह कहकर आप अल्लाह ताला के रब होने का एतराफ कर लिया। ये आलम वाक्या की पहली शक्ल थी, इसी को आलम अरवा का, आपका सवाल यही था ना कि आलम वाक्या और आलम अरवा क्या है, तो मैंने उसकी वजाहत हजूर कलंदर बाबौलिया के अल्फाज में ये दो पैराग्राफ पढ़कर अर्ज कर दी। खुद सोच लीजिए, ठीक हो गया
जी।
अब देखे ना, इसी को आलम वाक्या कहा। आशिया में जब हरकत की इब्तदा हुई तो आलम में वाक्या की दूसरी शक्ल का आगाज हो गया। ये मैं इस तरह से ठहर ठहर के क्यों पढ़ रहा हूं, ताकि आप भी इसी तरह जरा रुक रुक के आराम आराम हुजूर कलंदर बाबौलिया की बात को उस दर्जे पे समझें जिस दर्जे पे वो समझाना चाह रहे। ये जो पैराग्राफ है 33 सफे से शुरू हुआ है, 34 से सॉरी, क्या कहा, एक बार फिर जिंदगी की तशरी की जाती है। ये 34 सफे में इससे पेशतर जो कुछ कहा, ये सारा खलासा हुजूर कलंदर बाबौलिया ने खुद अपने अल्फाज में ये सफा 35 के आखिर तक कर दिया। हमें क्या करना है, इसकी तकरार करनी है, इसको बार बार जहन में दोहराना है। क्यों? ताकि हमें अपनी औकात पता चल सके, हमें अपनी बुनियाद पता चल सके।
सवाल पूछ सकते
हैं? इरशाद
सर, ये आपने अभी बताया मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि इल्मुल कलम वो सॉरी लोहे महफूज कुलियात और जो है वो आगे लोहे लाल महरबा को आपने कहा कि ये लोहे महफूज ये एक ही चीज के नाम है ना।
मैंने नहीं कहा, मेरी क्या मजाल मेरी क्या औकात
मैं
अर्ज कर देता हूँ, सुन लीजिए। ये लोहो कलम, कलम कहते हैं तवज्जो को, तवज्जो के तहत जो कुछ लिखा गया उसको किताबुल मुबीन कहते हैं, यानी अल्लाह की तवज्जो क्या है, कलम। और जब उस तवज्जो ने कोई प्रोग्राम लिख दिया तो वो किताबुल मुबीन बन गई। उस किताबुल मुबीन के 30 करोड़ सफात हैं, या 30 करोड़ फाइलें आज की टेक्नोलॉजी में कहें तो। हर वो जो उसका फाइल है वो एक लोहे महफूज है, और वो एक लोहे महफूज 80,000 हजीरों को कमांड करती है या उनका प्रोग्राम है। हजीरे का लफ्ज हमारे लिए बड़ा यूनिक है। हजर कहते हैं सफर के मुकाबले में हजर होता है, सफर मैंने चलना, हजर मैंने रुकना। तो वो सता जहां पे कोई चीज जाके ठहर जाए उसे हजीरा कहते हैं। तो एक लोहे महफूज 80,000 हजीरों का प्रोग्राम है। और फिर फरमाया कि एक हजीरा असल में क्या है। तो अगर हम इस मादी टेक्नोलॉजी में अपनी राइज टेक्नोलॉजी में इसको समझने की कोशिश करें तो इसको गैलेक्टियल सिस्टम कहेंगे, यानी कहकशानी निजाम। अब एक कहकशानी निजाम की आगे उन्होंने वजाहत की कि एक खरब मुस्तकिल आबाद निजाम और 12 खरब गैर मुस्तकिल निजाम, यानी हर निजाम के लिए एक के लिए 12 निजाम काम कर रहे। अब आप अपने जिस्म पे गौर फरमाए, आपके जिस्म में 12 निजाम काम कर रहे हैं। ये आपने साइंस की किताबों में पढ़ा होगा, एनाटॉमी की किताबों में पढ़ा होगा, जनरल साइंस की किताब में पढ़ा होगा, इंसानी जिस्म 12 निजामों पे काम कर रहा है। मसलन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे स्केलेटन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाँ या नहीं?
जी सर।
ये कोई इत्तफाक है? देखें जिस सतह पे उन्होंने बात को फरमाया, हमारी साइंस तो उसकी मुबादियात इब्तदाई बातें समझने में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि एक सिस्टम को 12 सिस्टम फीड कर रहे हैं। अब इसकी दूसरी मिसाल सुने, ये तो एक मिसाल हो गई ना कि आपके जिस्म में 12 निजाम काम कर रहे हैं। अब दूसरी मिसाल, आपकी उम्र है 60 साल, फर्ज करें 60 साल में आप गंदम के कितनी फसलें खा जाते हैं? अब गंदम क्या पूरा एक निजाम नहीं है? पूरा एक निजाम आप जिंदगी में कितनी दफा खाए आपने, यानी उस निजाम ने आपको फीड किया, क्योंकि आपका निजाम मुस्तकिल है, कदरे मुस्तकिल है, उसकी निस्बत तो मुस्तकिल है ना।
इसी तरह पानी का सिस्टम भी होगा फिर।
अब जब आप गौर करेंगे तो यहाँ पूरी कायनाती निजाम आपकी समझ में आएगा, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पानी से बनने वाली मखलूकात हो।
सोलर सिस्टम भी आ गया उसमें।
जाहिर है आखिर में आखिरी जुमला क्या है कि हर इसमें हर निजाम क्या है 12 या 13 सैयारों पे मुश्तमिल है। अब आप सैयारों से मुराद आप सिर्फ फलकी सोलर सिस्टम लें या अपने सेलुलर निजाम को लें? यानी आप इस बात को चाहे बाहर वो सामने कायनात में फैले हुए सोलर सिस्टम को लें या अपने बॉडी के सेलुलर सिस्टम को लें। अब सोलर और सेलुलर आहा क्या खूबसूरत बात आपने बताई। ये है यानी वही बात जब आपके बॉडी के अंदर आपके अंदर इनर में हो रही है तो अनफस है, बाहर उसका मुशाहिदा हो रहा तो आफाक है। ठीक हो गया?
सर किताबें मूवी कौन सी वाली स्टेज होगी फिर, कौन से पहले की वाली?
ये बिल्कुल कौन से पहले अल्लाह रब्बे करीम ने प्रोग्राम तजवीज किया, तरतीब दिया। आहा,
अल्लाह ताला का ज़हन
नहीं, अल्लाह के ज़हन को अलग रखें, अल्लाह के ज़हन ने जो प्रोग्राम तजवीज किया, जो तरतीब दिया,
अच्छा प्लान जो वो जो था विजुअलाइज करना चाहिए, जैसे आर्किटेक्चर के दिमाग में प्लान होता है।
हाँ, उसका नाम है किताबुल मुबीन। किताब कहते हैं सांचे को, मुबीन कहते हैं खुली हुई चीज को, रोशन चीज को, वाज़े चीज को। अल्लाह के जहन में प्रोग्राम है, अल्लाह अलग हो गया, जहन अलग हो गया, प्रोग्राम अलग हो गया। एक ही जुमले में तीनों बातें आ गई ना, कि अल्लाह के जहन में एक प्रोग्राम है, उसका नाम है किताबुल मुबीन। अब उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा लोहे महफूज है, फिर आगे उसी एक उसी की शरह हजूर कलंदर बाबा वाले ने बताई, किस तरह लोहे महफूज पे जो प्रोग्राम इस कायनात के लिए है, वो आलम में अरवा भी कहलवा रहा है, वो फिर रफ्ता रफ्ता आलम में मलकूत बन गया, फिर आलम में नासूत बन गया।
लाहूत पे आलम जबरूत, आलम नासूत, आलम मलकूत, इनकी डिवीजन जो है वो इसको हम इस किताब मुबीन के हवाले से किस तरह करेंगे, रिलेट करेंगे उसके साथ?
किताब अल मुबीन तो एक प्रोग्राम है ना, आगे उस प्रोग्राम को कैरी आउट करने के चार दर्जे।
लाहूत
मेरी अर्ज तो सुन लीजिए ना, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि किताबुल मुबीन एक प्रोग्राम है, आगे उसके नुफाज के चार दर्जे।
अच्छा,
ला हूत, ला मैंने नहीं, हूत मैंने होना, ऐसी स्टेज जहाँ कुछ भी नहीं है। जबरूत, जब कोई चीज होने लगी तो ये आलम में जबर हुआ, क्योंकि जो चाहा वो मौजूद हो गया, इसलिए उसको आलम में जबरूत कहा। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई तो इसका नाम आलम मलकूत हो गया। जब वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया, इसको आलम नासूत कह दिया।
सर मेरे ज़हन में जो आ रही है, आलम नासूत तो हो गया पॉजिटिव, आलम मलकूत उसका नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव के भी पीछे जो प्रोसेस चल रहा था उसका आलम जबरूत कहेंगे, वो रोशनियों की शक्ल में जो वो चीज थी।
शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये शुक्र है कि आपने इस तरह से गौर तो किया।
बहुत शुक्रिया सर,
अल्लाह आपको खुश रखे। देखे ना, मलकूत की डेफिनेशन क्या है, मलाकूत आलम मलाकूत को हम कहते हैं, मलाइका जो है नूरी मखलूक है, नूर का मतलब है ख्याल। ख्याल के दर्जे की मखलूक का नाम है मलाकूत। आगे इस किताब में बड़ी वजाहत की है हजूर कलंदर बाबा औलिया ने, इन चीजों को बड़ी वजाहत से बयान कर दिया, कोई उन्होंने इश्तबा रहने ही नहीं दिया। ये 35 सफात जो हैं, इनमें एक अजमाली सा खाका बयान कर दिया, और आगे पूरी किताब 36 सफे से लेके 275 तक इन्हीं बातों की वजाहत की गई है, एक एक कर। ठीक हो गया? देखिए ना, हमारा मकसद है इस किताब के कंटेंट्स को उस तरह समझना जिस तरह उन्होंने बयान किया। उन्होंने कई कमालात किए, उनमें से एक कमाल ये किया है कि तसव्वुफ की सारी टर्मिनोलॉजी को, तसव्वुफ की सारी टर्मिनोलॉजी को कुरान की टर्मिनोलॉजी से पकड़ के स्त्री कर दी। वो सबको ये ओवरलैप कर गई, ओवरराइड कर गई, ओवरराइट कर गई। उन्होंने बात को इशारों में बयान किया, हजूर कलंदर बाबौलिया ने खुल के बता दिया। हजूर मुर्शिद करीम ने एक जुमला कहा, मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इब्ने अरबी ने कहा कि एक बंदा आएगा
जो, हाँ,
कि जो हजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के असल मफाहीम को वाजे कर दिया। हजूर मुर्शिद करीम ने अल्फाज फरमाए कि इब्ने अरबी की ये पेशीन गोई शायद हजूर कलंदर बाबा औलिया ही के लिए थी। हो सकता है ऐसा ही हो। जी बिल्कुल सही। देखे ना, बात यह है कि हमें दोनों ने, हजूर कलंदर बाबा औलिया और मुर्शिद करीम ने, किस पटरी पे चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि कुरान में हुक्म है कि खुद गौर करो और बात को खुद समझो। बाकी उन्होंने हमें टिप्स दे दिए, ये पूरी लौह कलम। वो टिप्स हैं जो आपको शऊर के दायरे से निकाल कर इल्हाम के दायरे में दाखिल करती हैं। अगर आप इस पटरी पे चढ़ गए तो इंशाल्लाह आपको वही की तर्जें समझ आएंगी।
जैसे अब्बा हुजूर ने जो बात कही ना, वो मुझे इतनी अच्छी तरह, मैंने हाल के बचपन से हम लोगों पढ़ रहे हैं वो आयत, लेकिन अब्बा हुजूर ने उस आयत का बिल्कुल नया मफहूम दिया और लोगों को जब बताते तो वो भी हैरान होते हैं। वो नहीं है सूरह कमर की आयत वाला का दिया सरनल कुरान लिज़िक्र फ़ालम तक के, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, कोई समझे। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं खुद समझाऊंगा, मैं खुद समझाऊंगा, जो तो सही।
आहा बिल्कुल सही। देखे ना, यही बात जो हजूर कलंदर बाबा औलिया ने कही, जो मुर्शिद करीम ने कही, क्या कि समझना आपने है, समझाना अल्लाह ने। हम सर तो लगाएं अल्लाह की तरफ, यानी हम अपने जहन को अल्लाह की तरफ मतवज ही करना है ना, कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। अब हमने गिवन तराजम को हिरवे जहाँ बनाया हुआ है, लिहाजा अल्लाह की बात पीछे चली गई। मुतरजम का जहन, मुफसर का जहन पढ़ रहे हैं, अल्लाह को तो हम पढ़ ही नहीं रहे। ठीक हो गया
जी सर, थैंक यू सर,
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। और किसी का कोई सवाल है? इरशाद,
जबाल में अरवा में उन्होंने भला कहकर अल्लाह ताला के रब होने का इकरार कर लिया, तो यहीं पर साइज और शक्ति दोनों डिवाइड हो गई, इन्होंने इकरार नहीं किया और इन्होंने इकरार किया।
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल सही फरमाया। देखे ना, कुछ रूहों ने इकरार कर लिया, कुछ गुमगू में रही। उन्होंने अपने उस शऊर का इस्तेमाल नहीं किया, वो वहां भी नहीं किया और वो यहां भी नहीं कर रही। जब यहां भी नहीं कर रही तो क्या होगा? वो जो लफ्ज आपने फरमाया ना शकी, तो फिर वो जाहिर है शकी का मतलब तो शक करना, सिस्टम को फाड़ने वाला ही हुआ ना। वो सिस्टम को बस फाड़ने में लगे हुए, अल्लाह का सिस्टम तो फट नहीं सकता, लिहाजा वो शकी कहलाते हैं और जो उनका हशर होना है वो जाहिर है कि उन्हीं का अंजाम है। अल्लाह हमें उससे महफूज रखे। हमें अल्लाह ने कर्म किया, ये शऊर पैदा हो गया कि भी हमें अल्लाह की बात को समझना है। जब आप अल्लाह की बात को समझेंगे, आप अल्लाह के निजाम को समझेंगे। जब आप अल्लाह के निजाम को समझ लेंगे, क्या आप अल्लाह के निजाम को चलाने की कुदरत और अहलियत हासिल कर सकेंगे या नहीं? जब आप अल्लाह के निजाम को समझने के बाद उसको चलाने के अहल हो गए, तो आप क्या हो गए? इन्नी जायलो फिलर दे खलीफा। फिर आप अल्लाह के नियाबत का फरीजा सर अंजाम देने के अहल हो जाएंगे। वरना ऐश करें और इंजॉय करें। अल्लाह रब्बे करीम बहुत बड़े, उनको फर्क नहीं पड़ता। कोई अल्लाह की बात को समझ के, अल्लाह के निजाम को समझ के, अल्लाह के निजाम को चलाने की अहलियत हासिल करके अल्लाह का नायब बने या न बने, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ने अपना वाजे कर दिया पूरा निजाम भी और अपनी बात भी। और अपनी बात की मजीद वजाहत के लिए हजूर कलंदर बाब औलिया जैसे बंदों को भी क्या कहेंगे, हमारे लिए सामने ले आए।
सर, इस पे बाबा जी ने एक दफा बताया था सिकंदर बाबा वालों की हस्ती को, कि जैसे कैसे अरबी में कहते हैं ना, मुर्शद का मतलब होता है जहाज का कैप्टन, मुर्शद कहते हैं जहाज के कैप्टन को। तो उन्होंने कहा कि जो सिकंदर बाबा और ये जैसी हस्ती है, वो इस तरह है कि जैसे जहाज का कैप्टन है, वो जहाज चला रहा है, उसमें बहुत सारी मखलूक बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है, घूम रही है, नाच रही है, गा रही है, उन्हें परवाह ही नहीं है, बस वो सफर कर रहे हैं, कौन कहाँ लेके जा रहा है, और कैप्टन की सारी जिम्मेदारी है कि वो मंजिल पर पहुंचा कर उनको उतार देता है। लेकिन हमारे लिए सिकंदर बाबा वो हस्ती है, हम सब अजीमी जो है उसमें एंजॉय कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे।
यहाँ थोड़ा सा फर्क कर लें, जाहिलों की तरह मुसाफिर बनना एक बात है, और कैप्टन को असिस्ट करना, मुझे बताइए इसमें फर्क है या नहीं?
है सर, फर्क है।
बस इतनी सी इल्तिजा है कि इस फर्क को समझे। देखें, सिर्फ सिलसिले में दाखिल होके आप जहाज के मुसाफिर बन के मंजिल पे उतर गए, ना ये पता कि मंजिल क्या है, और एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी सूरत ये कि आप उस कैप्टन को असिस्ट करने के चक्कर में पड़ जाए। अगर हम उस कैप्टन की कैप्टेंसी को एंजॉय करने लगे, तो हाँ, कुछ तो सलाहियत कैप्टेंसी की हमारे अंदर भी आएगी कि नहीं?
जी सर,
मुझे फर्क बता दीजिए दोनों में। बस आपने कह दिया, बात यह है कि मॉनिटर क्यों बना, मॉनिटर कोई क्यों बनता है? भाई वो अपने टीचर की बात को उस तरह फॉलो करता है जिस तरह टीचर चाहता है, तभी तो उसे मॉनिटर बनाया जाता है। हाँ या नहीं?
यस सर।
इतनी ही सी बात है। अगर हम अल्लाह की बात को समझ के उस तरह चलेंगे जिस तरह अल्लाह चलाना चाहता है, या उस तरह चलें जिस तरह आप खुद चलना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक हो गया?
जी सर। सर, कैप्टन ने भी तो कुछ कैप्टन बनाए हैं ना।
देखे ना, नायब कप्तान का लफ्ज भी तो इस्तेमाल होता है ना। सिर्फ जहाज में कप्तान ही तो नहीं होता, नायब कैप्टन भी होता है, फिर आगे क्रू भी होता है। एक लफ्ज है क्रू। जी, क्या फरमाया आपने?
बहुत मतबा ये किताब पढ़ी, कख समझ नहीं आया था। अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे कैप्टन हमें मिले, तो अब कुछ समझ आने लगा।
अल्लाह आपको खुश रखे।
नंबर 35 तक صفحہ نمبر 35 تک بہت مسئلہ نہیں ذہن میں کوئی چیز آ رہی تھی, بس اوپر اوپر اڑ رہی تھی.
عرض یہ میں نے آپ کو صرف متوجہ کیا کہ دیکھیں شعوری نظام سے اوپر ایک نظام ہے, اس کو الہامی نظام کہتے. الہام کی بات حضور قلندر باب اولیا نے فرمائی, مرشد کریم نے نوٹ کی اور مجھ اور آپ تک پہنچا دی تاکہ ہم اسے استفادہ کریں, کریں نہ کریں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے. اگر استفادہ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس میں سر لگانا پڑے گا.
سر لگانا تو استاد بھی لازم چاہیے,
استاد تو بیچارہ کہہ ہی سکتا ہے نا کہ سر لگاؤ ٹھیک ہے نا. ہمارے سلسلے کے بہن بھائیوں نے تو اس کو مشکل قرار دیا, مخصوص صاحب کو مرشد نے تیار کیا کہ ان کی ذرا کلاس لے کہ میم کو گرا دو شکل نکل آئے گی. میں نے کیا پرچار کیا کہ بھئی اس کتاب کو مشکل مت کہیں, یہی کام آپ نے قرآن کے ساتھ کیا تھا, پلیز یہ مشکل کی میم کو کاٹ دیں. آپ نے جب میم کاٹی تو دیکھیں کیسی شکل نکل رہی ہے اس کے اندر سے,
شکل
کوئی بتائے نا میم کاٹنی, اب آپ نے بتائی تو
مطلب ہے یہ بات میں نے خود اپنے طور پہ تو نہیں کہی نا, مرشد کریم نے کرم کیا جی, انہوں نے ذہن بنا دیا تبھی تو یہ بات منہ سے نکلی. آپ اس کو میرا کمال نہ سمجھیں, ان کی عطا سمجھیں. آپ اس کو
جی
جی جی
جن حضرات کو ذات کا عرفان حاصل ہے ان کو بھی عارف کہتے ہیں.
بالکل ٹھیک.
جن کو صفات کا عرفان حاصل ہے ان کو بھی عارف کہتے ہیں.
جی ہاں,
دونوں میں کیا فرق؟
ایک کو ذات کا عارف کہیں گے, ایک کو صفات کا عارف کہیں گے. دیکھیں نا, ایک ماں ہے ایک باپ ہے, ماں کی خصوصیات ممتا کی ہیں, باپ کی خصوصیات بپتا کی ہیں. اس بیچارے پہ بپتا ہی پڑی رہتی. دیکھیں ایک ہے ذات کا عارف. میں نے یہ بات یوں عرض کی کہ تمام انبیاء کرام نے اللہ کو رب, ربی یا ربنا کہا, ہاں یا نہیں؟ قرآن کی تمام آیات دیکھ لیں ٹھیک ہے.
رب
صفاتی نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو اللہم کہا, بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہم کہنے والا ذات کا عارف ہے, اور رب کہنے والا اللہ کی صفت ربوبیت کا عارف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے خوش رہیے, اللہ خوش رکھے. تھینک یو.
اور ہمارے یہ ٹیچر اسی طرح ہمیں, ہمارا مانیٹر ہمیں اسی طرح گائیڈ.
پلیز ایک بات واضح کر لیں, دوبارہ عرض کر رہا ہوں, میں ٹیچر نہیں ہوں. اللہ نہ کرے, دیکھیں میرے اور آپ کے ٹیچر ایک ہی ہیں ٹھیک ہے. میں آپ کا ٹیچر فیلو ضرور ہوں. ایک ہوتا ہے کلاس فیلو, ایک ہوتا ہے ٹیچر فیلو ٹھیک ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ بھائی ذرا تم اپنے نوٹس دکھا دو, میں نے اپنے نوٹس آپ سے شیئر کر دیے, تو میں ٹیچر نہیں بن گیا. فار ہیون سیک, آپ میرے ٹیچر کے نوٹس دیکھ رہے ہیں. پلیز آپ نے اپنے ذہن کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دینا. دیکھیے ہمارے سلسلے کے امام قلندر باب اولیا ہیں, اور میرے اور آپ کے ٹیچر, میرے اور آپ کے ٹیچر حضور مرشد کریم ہیں. हमने उनकी बात को अपनाना है, फॉलो करना है, उनकी तर्ज फिक्र को इस्तेमाल करना है, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन के मुझे सराहते हैं तो मेरी दिलजोई हो जाती है, मेरा हौसला बढ़ता है, मैं आपकी फिक्र को मुर्शिदे करीम की तरफ और अपने सिलसिले के इमाम की तालीमात की तरफ मतवज्जो करने की सआदत का हामिल जरूर हूं। ये मेरा एजाज है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक हो गया
सर? लोगों कलर की बात के हवाले से निकला, उन्होंने कहा कि मुश्किल, मैंने कहा मैं सर जब हम लोग है ना ये जैसे छपरा था ना पहले तो उस जमाने में स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल से कॉलेज कहते हैं मैट्रिक से मैट्रिक से फर्स्ट इंटर में ना, तो लॉ कलम आती थी तो एक सफा या डेढ़ सफे का वो उस पर लिखा हुआ अच्छा, उस वक्त मुझे उस वक्त किताबी शक्ल में नहीं थी, इतना ज्यादा मुझे ये पसंद आती थी, इतनी एडमायर होती, हालांकि मुझे कुछ समझ में आता था कुछ नहीं आता था, हम थे साइंस के फिजिक्स के स्टूडेंट तो जो बातें साइंस के थ्रू रिलेट हो जाती थी वो बहुत अच्छी समझ में आ जाती थी, इतनी मतलब इतने कशिश ऐसी है इस बुक के अंदर के ज्यादा कशिश
महसूस किए। किसी किताब देखें, हर रूह हर रूहानी बंदे को इस किताब में ऐसी ही कशिश महसूस होती क्योंकि ये डायरेक्ट रूह को एड्रेस कर रही है। अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो उसकी बुनियादी वजह यह कि आप बेसिकली एक रूहानी इंसान है, आपको ही तो रूहानियत ने अट्रैक्ट करना था। गौर करें क्या कह गया, देखे ना जो बंदा दुनियावी दुनियादार किस्म का है उसको रूहानियत से क्या लेना देना, हम लोगों ने रूहानियत को पता नहीं क्या बनाया हुआ था। मुर्शिदे करीम ने यकीन करें सड़कों पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए, क्या
जी होर्डिंग्स?
हाँ, क्या रूहानी साइंस की पहली किताब, यानी रूहानियत को एक तो साइंस कहा और फिर उसकी पहली किताब,
पहली किताब
यानी रूहानियत जो है ये एक ऐसी साइंस है। साइंस किसे कहते हैं? वो इल्म जिसको एक तरतीब से पेश किया जाए, मुरतब करके, बस
एक मादी साइंस है और एक रूहानी साइंस है,
फिर आगे उसके दर्जे हो गए ना। बिल्कुल जी हाँ, दुरुस्त फरमाया आपने। देखे ना ये हजूर मुर्शिदे करीम ने कहा इल्मे हसूली, इल्मे लुदुन्नी और इल्मे हजूरी, ये इस्तलाहात कहां से आई? तो तीनों इल्म, लेकिन तीनों साइंसेज है ना। उन्होंने कहा एक फिजिक्स है, एक साइकोलॉजी और एक पैरासाइकोलॉजी है। ये इस्तलाहात किसने इस्तेमाल करके तवज्जो दिलाई के भाई फिजिक्स से ऊपर एक जहन की साइंस है, फिर उससे ऊपर एक रूहानी है, रूह की साइंस है।
ये हमारे
वजूद के पोर्शन है, दिमाग के तो बस एक ही पोर्शन है। देखे ना दिमाग के पीछे जहन काम कर रहा है और जहन के पीछे रूह काम कर रही है और रूह के पीछे जात काम कर रही है। असल खेल खिलवाड़ किसका हुआ? जात। जात जिस एनर्जी से काम ले रही है वो रूह है, ये जात और रूह फिर मिलकर जिस मीडियम को तख्लीक कर रहे हैं उसको जहन कहते हैं, और जहन जिस जिस्म के जिस स्क्रीन पे अपना डिस्प्ले कर रहा है उसको जिस्म कहते हैं। आसान हो गया ना
सर? मेरे जहन में ये आता है कि जैसे हम लोग जो कुछ लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि हम सिनेमा के कुछ पर्दे पर चलने वाली एक सादी प्लेन दीवार पर चलने वाली फिल्म है हमारा मादी जिस्म, तो वो आजकल जो है ना वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी आ गई है, अब सिनेमा के बजाय फिल्म जो है ना कमरे के बीच में चल रही होती है, सब लोग ऑडियंस बाहर बैठे होते हैं, होलोग्राम वजूद जो है वो रोशनी का बना हुआ होता है।
बिल्कुल सही,
ये समझ सकते जो है होलोग्राम वो असल में फिल्म है।
बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे जी हाँ। अब बात यह है कि आज तक आप और मैं टू डायमेंशन से आशना थे, साइंस ने हमें थ्री डायमेंशन से वाकिफ करा दिया, रूहानियत हमें सिक्स डायमेंशन की बात बता रही है। बस फर्क देख लीजिए कि आपका सफर टू डायमेंशन, अब ये आप मोबाइल की स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, टू डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई, लेकिन अगर आपको तस्वीर में डेप्थ फील हो जाए तो आप कहते हैं ये थ्री डायमेंशनल हो गई। मेरा और आपका वजूद सिक्स डायमेंशनल है। जब हमें ये शऊर आएगा कि मेरा आगे, मेरा पीछे, मेरा दाएं, मेरा बाएं, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, तो ये सिक्स डायमेंशंस का शऊर जो है ये है सित्तत अय्याम। ये तो आपकी साइंस वालों की विचारों की बस छोड़ दें, वो एक्स डायमेंशन किसको कहते हैं, वो तो टाइम को कह रहे हैं। छोड़ दीजिए इनको, वो बेचारे काविश कर रहे हैं। हजूर कलंदर बाबौलिया ने इस किताब में बड़ी वजाहत से बता दिया कि हुक्माए रब्बानी और अंबियाए कराम दो अप्रोचेस हैं। एक है खारिज को एक्सप्लोर करना, यानी वो मैटर के अंदर घुस के हकीकत को ढूंढ रहे हैं। ये है साइंसदानों का अप्रोच। उन्होंने कहा इसका नुक्स ये है कि वो हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अंबियाए कराम की अप्रोच ये कि पहले वो खालिक को तस्लीम करते हैं और फिर जब खालिक को तस्लीम कर लेते हैं तो उसकी मुजाहरात, उसकी तख्लीकात का वकूफ हासिल कर लेते हैं।
ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं?
पता नहीं जी, कहां से कहां जा रहे हैं, लाइन की हालत रहम करे। ये हमारी सादत है कि अल्लाह ने करम किया हम पे कि हमें इस किताब से मुतारिफ करा दिया। ठीक हो गया जी? अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज।